नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाड्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैकियावेली की पुस्तक नॉट इम्पॉसिबल डू व्हाट कांट बी डन एक सामाजिक नवाचार, व्यक्तिगत अनुभव और व्यावहारिक समस्या समाधान पर आधारित नॉन फिक्शन कृति है। उपलब्ध प्रकाशन जानकारी के अनुसार यह उनकी पहले प्रकाशित पुस्तक नॉट इम्पॉसिबल दी आर्ट एंड जॉय ऑफ डूइंग व्हाट कुडंट बी डन का नया शीर्षक या संस्करण है। पुस्तक का केंद्र किसी अमूर्त सफलता सूत्र के बजाय नॉट इम्पॉसिबल लैब्स के काम से निकला विचार है कि असंभव दिखने वाली मानवीय बाधाओं को छोटे स्पष्ट और सहयोगी प्रयोगों से बदला जा सकता है। एवेलिंग फिल्म और रचनात्मक उत्पादन की पृष्ठभूमि से आते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नहीं। यही बात पुस्तक के दृष्टिकोण को अलग बनाती है। इसमें आई राइटर और प्रोजेक्ट डैनियल जैसे चर्चित प्रयासों के माध्यम से कम लागत वाली सुलभ तकनीक बनाने की प्रेरणा दिखाई देती है। इसका उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि समस्या के पैमाने से डरने के बजाय एक व्यक्ति की वास्तविक जरूरत पहचान का संसाधनों, विशेषज्ञता और कहानी को कैसे जोड़ा जा सकता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, असंभव शब्द को तथ्य नहीं अधूरी समझ मानना। पुस्तक का मूल बौद्धिक आग्रह यह है कि असंभव अक्सर प्रकृति का अंतिम नियम नहीं होता, बल्कि जानकारी, पहुंच, धन, कौशल या संगठन की कमी का नाम होता है। एबलिंग इस अंतर को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जब किसी समस्या को केवल असंभव कहकर बंद कर दिया जाता है, तब उसके छोटे और हल किए जा सकने वाले हिस्से दिखना बंद हो जाते हैं। उनका दृष्टिकोण यह नहीं कहता कि हर इच्छा पूरी हो सकती है, बल्कि वह पूछता है कि वर्तमान व्यवस्था किस खास व्यक्ति की जरूरत पूरी नहीं कर रही और उसे पूरा करने के लिए न्यूनतम उपयोगी समाधान क्या हो सकता है। इस सोच में समस्या को विशाल सामाजिक घोषणा की तरह नहीं, ठोस मानवीय बाधा की तरह देखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, संवाद कर्मे या अपने शरीर से संगीत अनुभव कर्मे जैसी क्षमता को विलासिता नहीं, भागीदारी और गरिमा के प्रश्न के रूप में देखा जाता है। पुस्तक इसलिए नवाचार को केवल नए उत्पाद बनाने की प्रक्रिया नहीं मानती, वह उन धारणाओं की जांच भी है जिनके कारण समाज किसी जरूरत को नजरअंदाज करता है। पाठक के लिए व्यावहारिक सीख यह है कि किसी निराशाजनक लक्ष्य पर पहले उसकी सीमाएं लिखी जाएं, फिर हर सीमा को सत्यापित तथ्य, अनुमान और केवल संगठनात्मक जड़ता में बांटा जाए। इसी विभाजन से कार्रवाई की वास्तविक जगह निकलती है। दूसरा, आई राइटर में जरूरत, सादगी और खुली पहुंच का मेल आई राइटर पुस्तक के सबसे पहचाने जाने वाले उदाहरणों में है। इसे पक्षाघात से प्रभावित ग्रैफिटी कलाकार टेम्प्ट वन के लिए विकसित किया गया था, ताकि वे आंखों की गति से संवाद और चित्र बना सके। इस परियोजना का महत्व केवल तकनीकी उपलब्धि में नहीं है, यह दर्शाती है कि समाधान की गुणवत्ता का पैमाना उसकी चमकदार जटिलता नहीं, उपयोगकर्ता की खोई हुई क्षमता को लौटाने की क्षमता है। एबलिंग की टीम ने उपलब्ध और अपेक्षाकृत साधारण साधनों के साथ ऐसा तंत्र बनाने पर ध्यान दिया जो महंगे विशेष उपकरणों का एकमात्र विकल्प होने की धारणा को चुनौती दे। इस प्रक्रिया में डिजाइन का आरंभ तकनीक से नहीं, व्यक्ति के अनुभव से होता है। पहले यह समझना कि उपयोगकर्ता वास्तव में क्या करना चाहता है, फिर उसके अनुरूप उपकरण बनाना। खुला स्रोत और स्वयं बनाने योग्य सोच भी इसी दृष्टि का हिस्सा है। इससे समाधान एक बंद उत्पाद ना रहकर दूसरे लोगों के प्रयोग और अनुकूलन के लिए आधार बन सकता है। हालांकि पुस्तक की पद्धति को हर चिकित्सा उपकरण पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुरक्षा, परीक्षण और नियमन की आवश्यकताएं अलग होती हैं। फिर भी आई राइटर यह ठोस सबक देता है कि सीमित बजट में काम करते समय अनावश्यक विशेषताओं से अधिक जरूरी है उपयोगकर्ता की स्वायत्तता बढ़ाने वाला सरल, विश्वसनीय और सुलभ परिणाम। तीसरा, प्रोजेक्ट डैनियल और कम लागत वाली सहायक तकनीक की नैतिकता। प्रोजेक्ट डैनियल उस प्रश्न को सामने रखता है कि उपयोगी तकनीक किसके लिए बनाई जाती है और उसकी कीमत कौन तय करता है। दक्षिण सूडान के एक बालक डैनियल के दोनों हाथ विस्फोट में चले गए थे। इस संदर्भ में एवेलिंग और नॉट इम्पॉसिबल लैब्स ने त्रिआयामी प्रिंटिंग के सहारे कम लागत वाली कृत्रिम भुजा उपलब्ध कराने का प्रयास किया। पुस्तक के लिए इस उदाहरण का केंद्रीय अर्थ यह है कि नवाचार का मूल्य केवल पेटेंट, निवेश या बाजार आकार से नहीं मापा जाना चाहिए। यदि किसी समाधान तक जरूरतमंद व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता, तो उसकी तकनीकी श्रेष्ठता अधूरी है। परियोजना स्थानीय परिस्थितियों का भी महत्व दिखाती है। युद्ध और सीमित स्वास्थ्य ढांचे वाले क्षेत्र में उपकरण के साथ उसकी मरम्मत, दोबारा निर्माण, प्रशिक्षण और स्थानीय उपलब्धता के प्रश्न जुड़े रहते हैं। इसलिए सस्ती वस्तु बनाना पर्याप्त नहीं, उसके उपयोग की निरंतर व्यवस्था भी सोचना आवश्यक है। इस मामले में व्यक्तिगत सहायता और व्यापक प्रभाव के बीच संबंध भी स्पष्ट होता है। एक व्यक्ति की तात्कालिक जरूरत से शुरू हुआ काम कृत्रिम अंगों की कीमत और पहुंच पर सार्वजनिक चर्चा को बढ़ा सकता है। फिर भी पुस्तक को वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था का पूर्ण खाका नहीं समझना चाहिए। इसका अधिक सीमित लेकिन उपयोगी योगदान यह है कि यह डिजाइनरों, सामाजिक संस्थाओं और उद्यमियों को लागत, गरिमा और स्थानीय उपयोगिता को एक साथ रखने के लिए बाध्य करती है। चौथा, प्रतिबद्धता पहले, संसाधन और उत्तर बाद में जुटाना, एबलिंग से जुड़ा वाक्यांश कमिट, देन फिगर इट आउट पुस्तक की कार्यशैली को संक्षेप में रखता है। इसका आशय बिना सोचे जोखिम लेना नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी वास्तविक और जरूरी समस्या के सामने पूर्ण तैयारी, पूर्ण धन और पूर्ण विशेषज्ञता की प्रतीक्षा को कार्रवाई का बहाना न बनने देना। एबलिंग स्वयं तकनीकी पृष्ठभूमि से नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने प्रोग्रामरों, हैकरों, कलाकारों और अन्य सहयोगियों को एक साझा उद्देश्य के लिए जोड़ा। पुस्तक इस प्रकार विशेषज्ञता की कमी को अंतिम रुकावट मानने से इनकार करती है। सही प्रश्न यह बनता है कि समस्या हल करने के लिए किन लोगों, किन उपकरणों और किस प्रकार की साझेदारी की जरूरत है। यह पद्धति रचनात्मक उद्योगों की उत्पादन मानसिकता से भी जुड़ी है, जहां सीमित समय में अलग विशेषज्ञ मिलकर एक परिणाम तैयार करते हैं। लेकिन इसकी एक आवश्यक सीमा है। चिकित्सा, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्रों में प्रतिबद्धता के साथ जवाबदेही, परीक्षण और प्रभावित समुदाय की सहमति भी अनिवार्य है। केवल तेजी को सद्गुण मानना नुकसानदेह हो सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक पाठ इसलिए संतुलित रूप में लिया जाना चाहिए। लक्ष्य तय करें, एक छोटा काम करने योग्य कदम चुनें, आवश्यक कौशल की कमी पहचानें, सहयोगी खोजें और जल्दी सीखते हुए समाधान को सुधारें। यह क्रम अनिश्चितता को समाप्त नहीं करता, पर उसे निष्क्रियता से प्रयोग की दिशा में बदलता है। अंत में एक व्यक्ति की मदद से व्यापक बदलाव तक की रणनीति हेल्प वन हेल्प मेनी पुस्तक की सामाजिक प्रभाव संबंधी धुरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी एक व्यक्ति की सहायता अपने आप बड़े पैमाने पर बदलाव बन जाती है। एबलिंग का संकेत अधिक व्यावहारिक है। जब किसी एक व्यक्ति की विशिष्ट बाधा को गंभीरता से समझकर समाधान बनाया जाता है, तब उससे ऐसी डिजाइन सीख मिल सकती है जो समान बाधाओं वाले दूसरे लोगों के लिए उपयोगी हो। आई राइटर और प्रोजेक्ट डैनियल दोनों में शुरुआत एक स्पष्ट मानवीय स्थिति से होती है, ना कि पहले से तय विशाल बाजार से। इस क्रम का लाभ यह है कि टीम को समस्या की वास्तविकता, उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और मौजूदा विकल्पों की विफलता सीधे दिखाई देती है। कहानी कहने की भूमिका भी यहां महत्वपूर्ण है। एबलिंग के काम में फिल्म निर्माण और सार्वजनिक संचार का अनुभव परियोजनाओं को सहयोगी, मीडिया ध्यान और संसाधन जुटाने में मदद करता है। पर कहानी को समाधान का विकल्प नहीं बनना चाहिए। प्रभाव तभी टिकाऊ है जब उपकरण उपयोगी हो, लागत संभाली जा सके और दूसरे संदर्भों में उसे जिम्मेदारी से अपनाया जा सके। इस विषय से पाठक सीख सकता है कि प्रभाव का आरंभ व्यापक दावे से नहीं, एक सत्यापित जरूरत से करें। फिर समाधान की प्रक्रिया, डिजाइन और सीख को इस तरह साझा करें कि दूसरे लोग उसे दोहरा, बदल या आगे बढ़ा सके। यही व्यक्तिगत सहानुभूति को संरचनात्मक पहुंच में बदलने की संभावित राह है। निष्कर्ष में, नॉट इम्पॉसिबल उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो सामाजिक उद्यम, समावेशी डिजाइन, सहायक तकनीक, रचनात्मक सहयोग या उद्देश्यपूर्ण नवाचार में रुचि रखते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के काम आ सकती है जो किसी संस्था, विद्यालय, डिजाइन टीम या समुदाय में बार बार यह सुनते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण कुछ किया नहीं जा सकता। पुस्तक का उपयोगी पक्ष यह है कि वह समस्या को छोटा करके नहीं, उसे मानवीय स्तर पर स्पष्ट करके काम शुरू करने का आग्रह करती है। पाठक इससे उपयोगकर्ता की जरूरत को केंद्र में रखने, अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों को साथ लाने और आरंभिक समाधान को सीखने योग्य प्रयोग मानने की समझ प्राप्त कर सकता है। साथ ही इसे चिकित्सा तकनीक, विकास नीति या सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण मार्गदर्शक नहीं मानना चाहिए। बड़े पैमाने के प्रभाव के लिए वित्त, रखरखाव, स्थानीय भागीदारी, सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही आवश्यक रहते हैं। समान प्रेरक नवाचार पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान एबलिंग के वास्तविक परियोजना अनुभवों में है। यह विचार केवल कारोबारी अवसर या व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि पहुंच और गरिमा की ठोस बाधाओं के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी केंद्रीय शक्ति एक सरल लेकिन अनुशासित चुनौती में है, किसी व्यक्ति की अनदेखी जरूरत को इतनी स्पष्टता से देखना कि असंभव का दावा जांच के योग्य बन जाए। इसीलिए यह पुस्तक प्रेरणा के साथ डिजाइन, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी पर विचार करने का आधार देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मिक एबलिंग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।